अरपा रेडियो.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि।
चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी। लगभग 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त के पुत्रों में सबसे योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना। समस्त गुप्त राजाओं में चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक शौर्य और वीरोचित गुणों के लिए प्रसिद्ध है। उसने सन 375 से 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्ष राज्य किया। उसने अपने पितामह अर्थात समुद्रगुप्त के पिता के समान नाम रखा था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी और संभवतः भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध उज्जैन का राजा विक्रम, जिसके दरबार में कालिदास सहित 9 रत्न थे, यही चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 40 वर्षों तक दृढ़ता और कुशलता पूर्वक शासन किया। उसने अपने पिता के समान दिग्विजय की और उसके शेष कार्य को पूर्ण किया। अब देखते हैं वैवाहिक संबंधों की उसकी नीति को। चंद्रगुप्त द्वितीय भी अपने पिता के समान वीर एवं महान विजेता था। अपने साम्राज्य विस्तार एवं साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। गुप्त काल की वैदेशिक नीति में वैवाहिक संबंधों का प्रमुख स्थान रहा है। प्रमुख संबंध इस प्रकार थे। पहला, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया। दूसरा, अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंशीय राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। ये दोनों विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीति का उदाहरण है। तीसरा, उसने अपने भाई की विधवा ध्रुव देवी से विवाह किया। चौथा, उसने अपने पुत्र का विवाह कदंब राजवंश कुंतल के शक्तिशाली राजा की कन्या के साथ किया। पांचवा, दक्षिण भारत के अन्य राज परिवारों ने गुप्त राज परिवार में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और अब जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों के बारे में। वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य उदयगिरी गुहाभिलेख के शब्दों में संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। पहला, पश्चिमी भारत पर विजय। अपनी विजय की प्रक्रिया में उसने पश्चिमी भारत के शासकों की शक्ति का उन्मूलन किया। पूर्वी मालवा क्षेत्र से चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनमें शक विजय की सूचना मिलती है। प्रथम अभिलेख बिलसा के समीप उदयगिरी पहाड़ी से मिला है, जो उसके सचिव वीरसेन का है। दूसरा अभिलेख भी उदयगिरी से ही मिलता है, जो उसके सामंत सनकानीक महाराज का है। तीसरा सांची का लेख है, जिसमें उसके आम्रकायिक नामक सैनिक पदाधिकारी का उल्लेख है, जो सैकड़ों युद्धों का विजेता था। इन तीनों अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय पूर्वी मालवा में अपने सामंतों एवं सैनिक अधिकारियों के साथ अभियान पर गया था। इस विजय ने आर्थिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य की समृद्धि में योगदान दिया। उसने पश्चिमी भारत के प्रदेशों पर शासन कर रहे कुषाण वंश को पराजित किया। उसने सिंधु नदी की 7 सहायक नदियों को पार करके बाहलिकों को पराजित किया। उसने पंजाब और सीमांत प्रदेश को अपने आधिपत्य में ले लिया और हिंदुकुश के निकटवर्ती क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। शकों को पराजित करने से उसके सम्मान में वृद्धि हुई। उसने शकारी यानी शकों का नाशकर्ता की उपाधि प्राप्त की एवं विक्रमादित्य की महान उपाधि को धारण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों में शामिल है गणराज्यों का विनाश। उसने अपने राज्य एवं विदेशी राज्यों के मध्य मद्रक गण से लेकर दक्षिण में खरपरिक गण तक फैले छोटे गणराज्यों को पराजित करके अपने विशाल साम्राज्य का अंग बनाया। तीसरा, दक्षिण भारत पर विजय। दक्षिण के शासक उद्दंड हो गए थे और उन्होंने कर तथा उपहार देना बंद कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। चौथा, अवंती विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अवंती के शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर उसके निकटवर्ती प्रदेश काठियावाड़, गुजरात, मालवा पर भी अधिकार कर लिया, जिससे शकों की शक्ति समाप्त हो गई। पांचवा, पूर्वी राज्यों पर विजय। दिल्ली में स्थित मेहरौली के लौह स्तंभ से पता चलता है कि पूर्वी बंगाल के संगठित राज्यों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया और इन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार उसके साम्राज्य का विस्तार बहुत विशाल था। और अब चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन। चंद्रगुप्त उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ, सेना नायक, कुशल प्रशासक, कूटनीतिज्ञ एवं लोकप्रिय शासक था। उसने अपने इन्हीं गुणों के कारण प्रमुख राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को और अधिक सुदृढ़ और शक्तिशाली बना लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की वीरता उसके सिक्कों द्वारा भी स्पष्ट होती है, जिसमें उसे सिंह से लड़ता हुआ प्रदर्शित किया गया है। अपने पिता के समान चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। और आइए अब जानते हैं कुमारगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त लगभग 414 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसके पूर्वजों द्वारा स्थापित साम्राज्य अक्षुण्ण एवं सुव्यवस्थित रखा। उसके शासन के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र वंशीय आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, जिन्हें स्कंदगुप्त ने वीरतापूर्वक परास्त कर दिया। वह अपने पिता के समान ही धार्मिक सहिष्णु था तथा उसने कई मंदिरों एवं अनाथालयों का निर्माण करवाया। ब्राह्मण धर्म प्रगतिशील था एवं सूर्य, विष्णु, कार्तिकेय की पूजा होती थी। लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। स्वामी कार्तिकेय इस सम्राट के प्रधान उपास्य देव थे। इस सम्राट ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। कुमारगुप्त ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। 455 ईस्वी में कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई। गुप्त वंश के शासकों में अब सातवां नंबर, स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के देहावसान के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। यह अत्यंत ही वीर एवं साहसी सेनानायक था। इसके राज सिंहासन संभालने के तत्काल बाद हूणों ने सिंधु नदी को पार कर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। स्कंदगुप्त ने अत्यंत वीरता एवं साहस का परिचय दिया एवं इन्हें परास्त कर दिया। स्कंदगुप्त को जीवन पर्यंत हूणों से लड़ाई लड़नी पड़ी। इससे देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। स्कंदगुप्त वैष्णव धर्म का अनुयायी था, किंतु अपने पूर्वजों की भांति वह भी धार्मिक सहिष्णु था। स्कंदगुप्त का काल विपत्तियों एवं संकटों का काल था, किंतु उसने अपनी वीरता एवं धैर्य से अपने पूर्वजों के साम्राज्य को सुरक्षित रखा। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई थी। और आइए अब जानें चीनी यात्री फाहयान के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहयान भारत आया था। फाहयान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि के दर्शन करने, बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रंथों को प्राप्त करने एवं बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के उद्देश्य से फाहयान ने भारतवर्ष की यात्रा की। फाहयान ने 399 ईस्वी में चीन से प्रस्थान किया तथा 405 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया एवं 411 ईस्वी तक वो भारत में रहा। अपने कुल 6 वर्षों के भारत प्रवास में उसने 3 वर्ष पाटलिपुत्र में व्यतीत किए। और अब जानते हैं फाहयान द्वारा किए गए भारत वर्णन को। फाहयान का भारतीय विवरण फो को की नामक ग्रंथ के रूप में है। फाहयान अपनी भारत यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित पांडुलिपियों एवं अन्य प्राचीन अवशेषों के एकत्रीकरण में इतना संलग्न रहा कि वह अन्य वस्तुओं एवं घटनाओं से उदासीन बना रहा। जिस शासक के शासन में उसने शांतिमय यात्रा पूर्ण की एवं 6 वर्ष व्यतीत किए वो उसका भी उल्लेख करना भूल गया, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख करना भूल गया। पाहयान ने देश की तत्कालीन स्थितियों एवं यहाँ के निवासियों के संबंध में विस्तृत विवरण दिया है जिसका ऐतिहासिक महत्व है।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।